नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसके फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह हमारी विशेष पेशकश है। इसका नाम है बी द चेंज सीरीज। इन लाइव प्रोग्राम्स में हम आपके साथ सीधे आपके घरों तक जुड़ते हैं और पिछले लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये जो बदलाव का दौर आया है, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं, थोड़ी मुश्किल की घड़ियां हैं। इन घड़ियों में अगर हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, तो फिर हम सब मिलकर इस बदलते हुए वक्त को भी बदल सकते हैं अपने अंदर बदलाव को ले आकर। ब्रह्मा कुमारी की छोटी सी कोशिश रही है कि इस बदलाव के दौर में हम आपके साथ रहें। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट की या स्पिरिचुअल गाइडेंस और विजडम की जरूरत है तो ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन आपको ऑफर कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ेंगे जिन्होंने अपने लाइफ में मेडिटेशन को प्रयोग के रूप में किया है और बहुत लोगों को मेडिटेशन के मार्ग पर अग्रसर किया है। आज हमारे साथ सुनंदा दीदी जी हैं जो बीदर से जुड़ रहे हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
नमस्कार, ओम शांति, धन्यवाद।
दीदी, ये जो बदलाव का दौर आया है इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, बहुत सारे दोस्तों ने कोशिशें की है अपने अंदर अलग अलग तरह की नई नई चीजें करने की।
जी,
ऐसे में जो हमारे दोस्त आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, दोस्तों अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेज सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम लाइव है तो तुरंत तुरंत हम आपके कमेंट्स लेंगे और कमेंट्स में से जो क्वेश्चंस होंगे वो हम दीदी जी से पूछेंगे और दीदी जी उन प्रश्नों के लिए हमें मार्गदर्शन देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है, बस कोई ख्याल है, कोई विचार है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आप हमें शाउट आउट दे सकते हैं, तो वो सब कुछ हम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ दोस्तों ने हमें कल भी सवाल पूछे थे, आज भी सवाल पूछे हैं, तो उन सवालों से मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। हमारे साथ हमारे पहले दो जुड़े हैं, उनका प्रश्न मैं पढ़ना चाहता हूं। दीदी, अकरमुल खान हमारे साथ जुड़े हैं और अकरम जी का प्रश्न है, कभी कभी मैं जानबूझकर गलत काम करता हूं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश के बावजूद भी काम हो जाता है, अब मैं क्या करूं, ऐसा अकरमुल खान पूछते हैं। मैं समझता हूं ये सिर्फ अकरम जी का ही प्रश्न नहीं है, बहुत सारे हमारे युवा दोस्त ऐसे हैं जो गलतियां जानबूझ के कर लेते हैं और फिर बाद में उनका पछतावा।
मैं भी यही कहना चाहती थी, मुझे इनके सवाल में सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूं, मतलब वो खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन खान भाई जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे हमारे श्रीनिधि भाई कह रहे हैं कि न चाहते हुए भी हमसे गलती हो जाती है, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये विश्व में हर व्यक्ति का ऐसा ही है कि न चाहते हुए भी कई बार वो हो जाता है। तो इसके लिए मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आपके अंदर जो रियलाइजेशन पावर है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूं, इसका मतलब आप उसे रियलाइज करते हैं अपनी गलती को, ये आपके अंदर एक खूबी है और इस खूबी को आप ऐसे ही बरकरार रखिए। और इसके लिए आप है ना एकांत में खुद को समय दीजिए, आप एकांत में बैठिए और किस गलती होने का जो रूट कॉज है वो क्या है वो आप थोड़ा अपने आप पर फोकस कीजिए, और कहां मैं इम्पेशेंस हो जाता हूं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, इस चीज को आप अपने अंदर खोजने की कोशिश कीजिए, तो आप हमेशा इस रियलाइजेशन के लिए अवेयर रहिए और आप इस कंट्रोलिंग पावर को ऐसे ही यूज करते रहेंगे। आप जब भी गलत हो रहे, रियलाइज कर रहे और आप सोच रहे कि मैं इसको कंट्रोल करूं, इस प्रक्रिया को आप अगर ऐसे ही बरकरार रखते हैं तो अवश्य ही आप एक दिन इस अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इसको आप ज्यादा ऐसा टेंस की तरह मत लीजिएगा, ये कॉमन नेचर है, आप इसको इजी लीजिए और डेली इस पर वर्क कीजिए, खुद को थोड़ा चेक कीजिए और अपना पेशेंस बढ़ाइए तो आपका कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ेगा और आप उस स्वभाव पे विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, आपकी विजय निश्चित है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आप जब अकेले में बैठेंगे तो ऊपर वाले से ईश्वर को याद कीजिए, और जो मेरी कमी कमजोरी है उसको आप मन की बात जिसे कहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और ईश्वर से आप वो जो किरणें हैं जो मेरी कमजोरी को खत्म करती है उस किरणों को अपनी रूह पर आते हुए देखिए, और अपने अंदर की कमजोरी निकलते जा रही है, मैं इसमें से बाहर आ रहा हूँ, इस वीकनेस से वो अपने आप को आप ऐसा इम्प्रूव होता हुआ विजुअलाइज कीजिए, तो इससे आप इसमें से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा सवाल लगा, तो खान भाई आपको ऑल द बेस्ट है इस पुरुषार्थ में जिसे मेहनत कहते हैं, आप अवश्य ही आगे बढ़ जाएंगे।
जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये चीज समझाया दीदी। मैं समझता हूँ जो बातें आपने कही, एक तो अपने आप को चेक करने की आपने बात कही कि बहुत बार हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते कि हम कहाँ गलतियां करते हैं, और साइलेंस में बैठने की बात कही कि साइलेंस में हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो करके ईश्वर की मदद से भी हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, और विजुअलाइजेशन के पावर की चार चीजें
आज के शब्द में मेडिटेशन कहा जाता है। थोड़ा हम अपने आप को टाइम दे, अकेले में खुद से बातें करें और ईश्वर से शक्ति ले और अपनी कमजोरी को भगाए।
जी, अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूँ दीदी। उमा हमारे साथ जुड़े हैं, उमा ग्रोवर नाम है इनका, और वो कहते हैं कि भाई जी एंड दी, मैं माइंड में कोई बात अस जाती है तो आसानी से जाती नहीं। वो कहना चाहती हैं कि माइंड में जब कोई बात आ जाती है तो आसानी से जाती नहीं है, क्या करें, ऐसा उमा जी पूछते हैं। बहुत बार कुछ नेगेटिव ख्याल भी हमारे मन में आ जाते हैं तो वही चीज हमारे माइंड में चलता रहता है और वो माइंड से बाहर जाती नहीं है, तो उस चीजों को कैसे डील करें, कैसे इन चीजों को एड्रेस करें, उमा जी पूछती हैं।
ये भी एक कॉमन स्वभाव है, क्योंकि आज हम जिस वातावरण में बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें हमारे अन्न की बात है, पानी की बात है, हवा की बात है, तो आज वातावरण का प्रभाव जो है वो हर आत्मा पर भी पड़ रहा है, और क्योंकि वातावरण में नेगेटिविटी ही ज्यादा है, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, चाहे हम मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, या कोई मनोरंजन के साधन को हम देख रहे हैं, या हम दोस्तों के बीच में बैठे हैं, अगर हम 24 घंटे में चेक करेंगे खुद को, हर व्यक्ति के लिए है ये बात, तो हमें पता चलेगा कि 24 घंटे में हम पॉजिटिव बातों को कम सोचते हैं, कम देखते हैं और कम बोलते हैं और कम सुनते भी हैं। और जब हम कम पॉजिटिव को सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसका मतलब अवश्य ही हमारे अंदर व्यर्थ ज्यादा आ रहा है। तो ये जो व्यर्थ मेरे अंदर आ रहा है, क्या कह रहे थे उमा जी, प्लीज प्रश्न थोड़ा आगे का बताइएगा।
वो वही कह रहे थे कि जब कोई बात मेरे मन में आती है तो आसानी से जाती नहीं है मन के बाहर, वो अंदर ही अंदर उसी बात में मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर देती हूँ, तो कैसे उस चीज को बाहर हटाया जा सकता है।
जी, तो मुझे इसमें जो सबसे पहली बात लगती है तो वो ये लगती है कि इंसान उस किसी भी चीज को तब छोड़ सकता है, इसमें छोड़ना है, हमें इस स्वभाव को छोड़ना है, इंसान तब इस स्वभाव को छोड़ सकता है जब वो खुद को माफ करता है। एक होता है दूसरों को माफ करना और एक होता है खुद को माफ करना, नहीं तो इस प्रकार से जब हम व्यर्थ का बोझ अगर ढोते रहेंगे ना तो हम भारी होते जाएंगे। जिस प्रकार से कोई अनाज है और उसको हमने एक जगह रख दिया है, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया, जैसे मैं एक छोटी सी एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक गुरु थे, उनके कुछ शिष्य थे, तो उन शिष्यों को गुरुजी ने कहा कि कल आप क्या करना, जिनके लिए आपके मन में व्यर्थ चलता है वो कितने लोग हैं, उतने आलू है ना, पोटैटो आप कल अपने बैग में लेके आना गुरुकुल आते समय, और हर आलू पे उन व्यक्तियों का नाम लिख करके लेके आना। तो सभी शिष्यों ने एग्री कर लिया। दूसरे दिन जब शिष्य आए गुरुकुल में, किसी के झोले में 2 आलू थे, किसी के झोले में 5 थे, किसी के झोले में 3 थे, किसी के 8 थे, किसी के 10 थे, फिर गुरुजी ने सबसे पूछा तो सबने बताया हमने इतने इतने लाए, तो गुरुजी ने कहा कि 24 घंटा इन आलूओं को आपको अपने साथ ही रखना है, चाहे आप स्नान कर रहे तो भी वो झोली आपके साथ माना होनी चाहिए वहां पर ही, और चाहे आप सो रहे तो उसको बाजू में रखना है, माना 24 घंटा इसको छोड़ना नहीं है। तो 5 दिन तक शिष्यों को कुछ नहीं लगा, 6वें दिन उनको लगने लगा, अरे ये क्या है, गुरुजी आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं बता रहे, आखिर करना क्या है, हम रोज इसको ढो रहे हैं, लेके जा रहे लेके आ रहे, और ये हमको बोझ सा महसूस हो रहा है। अब 6वां दिन आ गया तो क्या होने लगा, उसमें से हल्की सी बदबू आने लगी, गंध बदबू आने लगी। फिर भी बच्चों ने 6 दिन हो गया कुछ नहीं बोला गुरुजी को। अब 7वें दिन जो था वो जब ज्यादा असहनीय बदबू आने लगी, तो सभी बच्चों ने मिलकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने हमको ये कह तो दिया हम कर भी रहे हैं, लेकिन आखिर ये है क्या, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो आप हमें बताइए। तो तब गुरुजी ने कहा कि इसको ढोने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चों ने कहा एक तो ये हमें बोझ महसूस हो रहा है काफी, दूसरा अब ये सड़ रहे हैं तो इसमें से जो बदबू आ रही है उस बदबू को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसको आखिर करना क्या है वो आप हमें बता दीजिए। तब गुरुजी ने शिष्यों से कहा, बच्चों से, कि देखो बच्चों अगर ये तो आलू है केवल, लेकिन कई ऐसी बातें हमारे जीवन में है जो हम अपने बुद्धि रूपी झोली में ढो रहे हैं। किसी ने 10 साल पहले मुझे कुछ कह दिया था, किसी ने 6 महीना पहले कुछ कह दिया था, किसी ने प्राइमरी एजुकेशन में वो क्लासमेट था उसने उस समय मुझे थप्पड़ मारा था, किसी ने मैं जब कॉलेज पढ़ रहा था तो उसने रैगिंग किया था तो उसने मेरे से ऐसा किया था, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, या वो बातें जो है वो मेरे अंदर से जा नहीं रही है। तो ऐसा धीरे 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 क्या हो रहा है ना, वो माइंड में वो स्टोर होते जा रहा है, और जब वो चीज स्टोर हो रही है तो वो रोज हमको फिर याद आ रही है, क्योंकि वो व्यर्थ होने से जिस प्रकार से आलू में से धीरे धीरे बदबू आना चालू हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों आप अगर इस प्रकार से पुरानी बातें, 2 दिन पहले की बातें, 4 दिन 4 साल पहले की बातें अगर ढोते ही रहेंगे अपने दिमाग में, तो फिर आप इसमें से इस प्रकार से मतलब बाहर नहीं आ सकेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उन व्यक्तियों को भी माफ करना चाहिए जिन व्यक्तियों ने आपको कुछ तकलीफ दी है, जिनके कारण आपके संकल्प चल रहे हैं, और उनको भी माफ करना है और खुद को भी माफ करना है। हमसे भी तो गलती होती है तो हमारा व्यर्थ संकल्प चलता है। और इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से हम दूसरों को माफ करने की बात कह रहे हैं, उसी प्रकार से हमें, हमने जिनको दिया है दुख दिया है कष्ट दिया है, तो हमें भी उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। तो माफी मांगना भी है, माफी देनी भी है, और स्वयं को माफ करना भी है। जब ये प्रोसीजर हम करेंगे तो वो जो व्यर्थ का बोझ मैं महसूस कर रही हूँ रोज, उस व्यर्थ के बोझ से हम मुक्त हो सकेंगे और खुद को हल्का महसूस करेंगे। तो इसमें है छोड़ना भी है, हमें भूलना भी है, और माफ भी करना है, तो तब हम इसमें से इजीली बाहर आ सकेंगे। और एक बात मैं आज सुबह भी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे ज्ञान के बारे में, तो एक बात उसमें ये भी निकली कि रोज सुबह जब हम उठते हैं तो एक बजट बनाना है कि दिन भर मुझे कैसे कर्म करने हैं, और दिन भर उसी तरीके से हम अगर अपने आप पर अटेंशन रख करके व्यवहार में आएंगे, हम 18 घंटे 16 घंटे जब तक भी काम कर रहे सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, फिर रात को जब हम सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो उस समय हमको उस बजट को जो हमने सुबह बनाया था उसका ऑडिट करना है कि हमने कहाँ कहाँ कुछ व्यर्थ तो नहीं किया, गलत तो नहीं सोचा, गलत तो नहीं देखा जो स्टोर हो रहा है इधर। और अगर मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये व्यर्थ है तो उस दिन की बात उसी दिन खत्म करनी है, ये अपने जीवन का लक्ष्य रखिए। और इसके साथ साथ हमें ईश्वर से भी रोज माफी मांगनी चाहिए। हम जब छोटे थे हॉलीडेज में समर वैकेशन में जब हम गांव में जाते थे तो हमने हमारी ग्रैंड मदर को देखा है, पुराने लोगों को देखा है कि जब वो रात को सोने से पहले बिस्तर पर जाने से पहले वो भगवान के सामने जाते थे और ऐसा ऐसा करते थे भगवान को, मतलब क्या भगवान मेरे से कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, ऐसा किए बिना वो सोते नहीं थे पहले के लोग। तो ऐसे ही हमें भी ये कार्य रोज करना है ताकि हम उस व्यर्थ के बोझ से हल्के हो सके और उस व्यर्थ के स्वभाव से हम खुद को बाहर ला सके। इसलिए रोज अगर मेरे से कुछ ऐसा हो रहा है या कोई मेरे से ऐसा कर रहा है तो उसको उसी दिन हम बातचीत करें और वहां के वहां क्लियर करें उस बात को, सामने वाले को भी हल्का रखे और हम खुद भी हल्के रहे। तो अच्छा सवाल था उमा बहन, अच्छा लगा आपसे बात करके।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी, ये कहा कि अपने आप को भी माफ करना है, दूसरों को भी माफ करना है और साथ साथ दूसरों से माफी मांगनी भी है। और ये चीजें हम अक्सर ये देखते हैं कि इसकी वजह से कोई चीज हमारे बुद्धि में चलती रहती है तो वो चलती ही रहती है, और इसे अगर हम हर दिन का प्रैक्टिस बना ले तो ये आसानी से हम इससे पार हो सकते हैं और ये जो मन के ख्याल हैं उसके लिए हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूं। रोजी जी कहती हैं, वो कहते हैं कि आई हैव बीन कनेक्टेड टू राजयोग मेडिटेशन विद ब्रह्मा कुमारीज फॉर अ मंथ। जी अनुभव बता रहे हैं। एंड इट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ एंड रिमूव्ड मेनी कैओस इन माय लाइफ। वो कहते हैं कि जब से वो राजयोग मेडिटेशन से, ब्रह्मा कुमारी से पिछले एक महीने से जुड़े हैं और उनके अनुभव बहुत अच्छे हैं और वो कहते हैं कि उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है और उनके लाइफ में जो बहुत सारे कैओस थे वो चीजें दूर हो गई हैं। गोपी चंद जी हमारे साथ।
रोजी सिस्टर, आप एक मेडिटेशन से जुड़ गए हैं और आपके जीवन में जो रिलैक्सेशन आ रहा है इसको आप इंजॉय कीजिए और आपकी जो अनुभूति है इस मेडिटेशन से वो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, तो उसमें आपको भी दुआएं मिलेगी। तो बहुत अच्छा अनुभव है, कीप इट अप।
थैंक यू दीदी, थैंक यू रोजी जी। गोपी चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं दीदी और वो प्रश्न पूछते हैं कि कोरोना से हमें क्या नया सीखने को मिल रहा है, ऐसा ये पूछते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न,
और मैं समझता हूँ
प्रश्न है ये। जी, तो मुझे इस कोरोना में पर्सनली मैं बताना चाहूंगी कि हमको ये सीखने को मिल रहा है, आज तक हम सभी मनुष्य आत्माएं जो है पैसे को, संपत्ति को, वैभवों को, साधनों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते रहे हैं और हर मनुष्य यही सोचता था आज तक कि पैसा ही भगवान है, पैसा है तो ही सब कुछ है, पैसा है तो ही हम कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन इस वायरस ने ये हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है कि हमारी जो सच्ची प्रॉपर्टी है वो इंसान है, इंसान से जुड़े रहना है, रिलेशंस हमारे सबके साथ अच्छे होने चाहिए। परसों एक व्यक्ति से मैं सुन रही थी कि इस कोरोना के दौरान हर व्यक्ति ये जरूर सोच रहा है कि मेरे बाजू वाले को भी कोरोना नहीं होना चाहिए। मतलब आज तक लोग क्या सोचते थे, मेरा बाजू वाला घर मेरे से बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे घर में गाड़ी है लेकिन उसके घर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए, या मेरे से अच्छी कोई चीज, मेरे पास एक प्लॉट है उसके पास दो प्लॉट है तो उसके पास ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो ईर्ष्या वाला संस्कार, जेलस वाला संस्कार जो था मनुष्य के अंदर, वो संस्कार थोड़ा सा यहाँ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हर कोई हर एक के लिए सोच रहा है कि किसी को भी ये वायरस नहीं होना चाहिए ताकि हम सभी स्वस्थ रहे। तो इस कोरोना से मनुष्य ने जो सीखा है कि हमें औरों को भी शुभ भावनाएं देनी है और सबके लिए शुभकामना ही रखनी है। और जैसा मैं स्वयं के लिए चाहता हूँ मेरी हेल्थ अच्छी रहे, ऐसे औरों की भी हेल्थ अच्छी रहे। और मेरे पास पैसा कम, मेरे पास पैसा है, दूसरे के पास पैसा कम है, तो मुझे लगता है ऐसे भी कई लोग सोच रहे होंगे कि हे भगवान, सबके पास धन हो ताकि वो भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वो अपना इलाज कर सके, उतना सफिशिएंट जो मनी है सबके पास होनी चाहिए। तो ये शुभ भावना लोग दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हम इंसान इंसान के साथ जुड़े रहें, अपने संबंधों में प्यार बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, क्योंकि हम लॉकडाउन में घरों में भी बैठे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत केसेस हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है कि हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना सीखे, एक दूसरे को समझना सीखे। और एक जो चांस इस समय हमको मिला है कि हमारे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है पिछले कई वर्षों में, महीनों में, दिनों में, तो वो हम फोन से भी क्लियर कर सकते हैं, घरों में हम आमने सामने बैठ के भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम इसी वायरस की इस वातावरण को अगर पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो अवश्य ही हम बहुत अच्छी बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं इनके इस वायरस के दौरान भी। तो बहुत अच्छा, मैं ये, मुझे ये है ना रोज ही लगता है ये जो बात है कि कोरोना में हम सबसे ज्यादा सीख रहे रिलेशनशिप अच्छी बना के रखनी है जी। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि किसी को भी ये वायरस अटैक न करे और सभी हेल्दी रहे, आप सभी अपने घरों में भी रहे, सेफ भी रहे
जी। मैं समझता हूँ गोपी चंद जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिला, मैं समझता हूँ दूसरे दोस्तों को भी ये चीज देखने को मिली कि एक ऐसे टाइम पे जहां पर हम देख रहे हैं कि एक पैंडेमिक सिचुएशन है, जहां पर हम सभी देखते हैं बाहर बहुत ज्यादा डर का भी माहौल है, ऐसे में भी हम कुछ पॉजिटिव रख सकते हैं, एक दूसरे के प्रति हम गुड विशेज रख रहे हैं, किसी से जेलसी नहीं कर रहे हैं, और साथ साथ अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस करने के बारे में भी हम
चांस जो हमें मिला है भाई जी वो ये जी। है कि हम जो कई वर्षों से सोचते थे बचपन से, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, थोड़ा सिंगिंग कर लूँ, थोड़ा ड्राइंग कर लूँ, थोड़ा पेंटिंग कर लूँ, थोड़ा डांस कर लूँ, थोड़ा कुकिंग सीख लूँ, ये जो हमारी इच्छाएं थी बचपन से, वो करने के लिए हमें समय ही नहीं मिलता था, हम रोज के रूटीन लाइफ में इतना टाइट हो गया था हमारा शेड्यूल, हम इतने बिजी हो गए थे कि फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, ही हर एक के मुख से निकलता है। तो ये सब करने का जो चांस है वो हम इस समय को अच्छे से कर सकते हैं, वो सब चीजें अपने डेवलप कर सकते हैं, इनर वैल्यूज को जो है हम इसमें बाहर ला सकते हैं, और अपना टाइम स्पेंड करने में आप बोर मत होइए, अपने क्वालिटीज को यूज कीजिए और आप खुद भी इंजॉय कीजिए उसको, और फैमिली में भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखिए, उसमें कहीं पर भी बोरिंग वाला एटमॉस्फेयर मत बनाइए, डिप्रेशन वाला एटमॉस्फेयर मत बनाइए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियां बांटिए, एक चांस हमें बैठे जगह इस सिचुएशन में मिला है जी।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी कि हम घर के माहौल को भी अच्छा कर सकते हैं, उसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूं। अगला प्रश्न, हमारे साथ उर्वशी राणा जी जुड़े हैं और उर्वशी जी प्रश्न पूछते हैं, दीदी आई लॉस्ट माय 16 ईयर ओल्ड सन इन द लास्ट ओवर द लास्ट 7 ईयर्स, पिछले सात वर्षों पहले इन्होंने अपने 16 साल के लड़के को खोया है, और मेरा दूसरा लड़का 30 साल का है और वो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल है, और वो फिर भी हमारे ऊपर आज तक भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और वो अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है, और वो बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है, और कभी कभार मैं बहुत लो फील करती हूँ और फील करती हूँ, मैं बहुत ही होपलेस फील करती हूँ, एंड अपने आप के जीवन को खत्म करने के बारे में सोचती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाई हूँ, या फिर उनके लाइफ को सेटल करने के लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ, तो बहुत लो फील करते हैं और कोई उम्मीद नहीं है लाइफ में, ऐसा वो महसूस करती हैं। उर्वशी जी, अपने बेटे के बारे में आप उन्हें प्लीज गाइड करें।
आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी आवाज साफ है दीदी आपकी।
जी 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 तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी एक बात कि प्रकृति का एक नियम होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसमें ऐसा कहा जाता है उस लॉ में कि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि अगर हमारे सामने कोई होपलेस केस है भी, दिखाई दे भी रहा है, और वो हमारी अपनी सिचुएशन है, उसका दर्द उसका दुख जो है मैं वो समझ पा रही हूँ, आप जो उर्वशी बहन पूछ रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब तक आप उस केस में होप नहीं डालेंगे और आशावादी बनकर, होपफुल बनकर, ऑप्टिमिस्ट बनकर अगर आप उस केस को हैंडल नहीं करते हैं, क्योंकि आप जैसा वातावरण में आपके थॉट्स को डालेंगे, विचारों को डालेंगे, वैसे ही वो थॉट्स आपको रिवर्स में आएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इस सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव बना के रखिए। ये जो आपको थॉट्स जो लो लेवल के आ रहे हैं, वो आपको ऐसे थॉट्स करने की जरूरत नहीं है, और हर दुख के बाद एक सुख छिपा हुआ होता है। जीवन का जो साइकिल है इसमें हमेशा हम दुखी नहीं रहते हैं, सुख और दुख ये दोन क्या कहते हैं बाजू है इस जिंदगी के भी। तो इसलिए आप हम पॉजिटिव बने रहिए फ्यूचर को लेकर के, अच्छा ही होना है, अच्छा ही होगा मेरे साथ, इस बात को आप रोज दोहराइए अपने मन में, और उसको आप ऐसा आवाहन कीजिए अच्छे सिचुएशन का, तो आपके साथ अवश्य ही अच्छा ही होगा। और जिस बेटे को लेकर आप टेंशन ले रहे हैं, उसको भी आप रोज पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। आप जितना उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके मन पे कार्य करेगा और वो भी पॉजिटिव होते जाएगा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि आप बच्चे की माँ हैं, आप अपने हाथ से बनाकर उन्हें रोज खाना खिलाते हैं, इसलिए जब आप फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना बना रहे हैं रोज, तो आप खाना पकाते समय बहुत प्यार से ईश्वर की याद में खाना बनाइए, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत असर होता है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग से और ईश्वर की याद से कि ये खाना खाने से मेरे बच्चे में एक्टिव हो रहा है और मेरे अंदर भी वो शक्ति भरती मुझे महसूस हो रही है, इन विचारों से जब आप खाना बनाएंगे और खाते समय भी अगर आप कुछ में लगा करके भोजन करेंगे और ईश्वर की याद में खाना खाएंगे, तो आपका और बच्चे का मन भी परिवर्तन होगा। आपके अंदर जो ये निराशावादी विचार आ रहे हैं, और वो जो निराशावादी विचार है, वो निराशावादी विचार धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे, और हमारे अंदर हम जो सोचते हैं इस बात को लेकर कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये एक प्रकार का जो अटैचमेंट होता है, आप अपने बच्चे को ईश्वर को समर्पित कीजिए बुद्धि से, और ईश्वर को भी बोलिए कि ये आपका बच्चा है और आपको इसमें ये बल भरना है कि ये खुद को परिवर्तन कर सके। तो आप भी वो शक्ति लीजिए और बच्चे को भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में बहनों की, माताओं की, आने वालों की संख्या भाइयों से ज्यादा है, तो जितनी भी माताएं आती है, मैक्सिमम माताओं से हमने ये अनुभव सुना है कि मैंने ये अन्न का जो प्रयोग है कि अन्न को ईश्वर की याद में पकाया और मेरे पति का गुस्सा कम हो गया है पहले से, मेरे बच्चे में मैं चेंज महसूस कर रही हूँ पहले से, मेरे घर का जो वातावरण है इसमें बदलाव होता हुआ मैं देख रही हूँ पहले से। तो धीरे धीरे घर का जो वातावरण है हमारे मन से बदलना शुरू होता है। तो अन्न का मन पर असर आएगा, मन में शुद्धता आते रहेगी भोजन शुद्धता से करने से मन के विचार आशावादी बनेंगे तो घर का जो एटमॉस्फेयर है ये भी होपफुल बनते जाएगा। तो उस जगह में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के वाइब्रेशन जब पॉजिटिव बनते जाएंगे तो आपको जो निराशावादी विचार आ रहे हैं तो वो विचार भी आपके होपफुल बन जाएंगे। तो स्टे पॉजिटिव उर्वशी बहन
जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। हमारे एक दोस्त हैं लीजा, वो भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रही हैं कि हमारा फूड हमारे थॉट्स और वाइब्रेशन को चेंज कर सकता है, ये चीज भी वो नोटिस कर रहे हैं। लगभग हम आधे घंटे जितनी बातचीत को आगे कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप उन प्रश्नों को यहाँ पर वीडियो सेक्शन में, जहां पर भी आप देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, जिसी भी हैंडल पे आप उस चीज को देख रहे हो, यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों को हम दीदी जी से पूछेंगे और मार्गदर्शन लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आज आप सिर्फ हमारे साथ कोई बात ही शेयर करना चाहते हैं तो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो प्राइवेट नेचर के हैं, जहां पर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते और सवाल पूछना चाहते हो, तो ऐसे प्रश्नों को आप सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर ईमेल कर सकते हैं और वहां पर हम आपके प्रश्नों को लेंगे जरूर, बट हम आपके नाम को प्राइवेट रखेंगे, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो अगला एक प्रश्न हमारे साथ है दीदी, अशोक नारंग जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं दूसरों पर शंका बहुत होती है, क्या करें, ऐसा अशोक जी पूछते हैं, उनको आप प्लीज गाइड करें।
वैसे हिंदी में कहा जाता है अशोक भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। शक एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवा नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पर एक पढ़ा था कि एक ससुर होते हैं बूढ़े, तो वो घर के अंदर सोते हैं तो बहू घर के अंदर पलंग पर वो सोते हैं तो बहू उनको कुछ टेढ़ा ऐसा बात करती है कि आप यहाँ सो रहे, आप तो आप यहाँ मत सोइए, आप है ना बाहर खटिया डाल के सोइए। तो वो क्या सोचता है कि मुझे बहू जानबूझ करके ऐसा बोल रही है कि मैं यहाँ नहीं सो, मैं बाहर सोऊंगा तो मेरे को कोई जानवर आएगा, कुछ आएगा, वो मुझे कुछ तकलीफ देगा, सांप आएगा काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। मतलब शक का है ना कोई इलाज नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। हमारे पास सांगारेड्डी में दादी गुलजार जी, जो आज विद्यालय के ब्रह्मा कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तेलंगाना में आता है सांगारेड्डी, यहाँ बीदर से 90 किलोमीटर अवे है। तो 2012 में दादी जी का प्रोग्राम था, वहाँ बिल्डिंग इनॉग्रेशन था विद्यालय का। तो यहाँ बीदर में एक माता जी आते थे, उनका नाम उमा माता है। तो उनके पति को शक की बहुत बीमारी, और घर में पति कमाते भी नहीं थे, ये ही ट्यूशंस लेकर के घर चलाती थी। यहाँ पर भी आने के लिए उनको वो बहुत ऐसा टॉर्चर करते थे। उनको यहाँ नजदीकी घर था उनका उस समय, तो वो रोज आती थी लेकिन पति उनको बहुत टॉर्चर करते थे, तू वहां जाती है, वहां इतने जेंट्स भी आते हैं, वो उस घर के लोग आते हैं, तू वहां मत जा, क्यों जाती है, वगैरह वगैरह। शक की बात चल रही ना, इसलिए मैं बता रही हूँ क्लियर। तो दादी जी का जब प्रोग्राम था तो उसने अपने पति को कहा कि मुझे दादी जी का प्रोग्राम अटेंड करना है, आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि उसको तो पता है पति जी मेरे शक लेने वाली व्यक्ति है। तो उसने कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, तो पति ने मना कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, यहाँ बीदर से एक माताओं का ग्रुप जा रहा है बस में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। तो पति ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब दादी जी आ रही इतना नजदीक तो खींचता है हर कोई को, लगता है कि मैं दादी को देखूं, दर्शन करूं, एक नजर उनकी मुझे आत्मा पर पड़ जाए। तो वो ग्रुप के साथ आई, दो प्रोग्राम थे, उन्होंने दोनों प्रोग्राम अटेंड किया। और शाम को जब वो बस पकड़ने के लिए सब ग्रुप के साथ गए तो एक चौरस्ता है, वहां पर सभी खड़े थे, बस का वेट कर रहे थे, सभी चढ़ने लगे। और इवनिंग आवर्स होने से जो जॉब होल्डर्स होते हैं वो हैदराबाद से जो रिटर्न आते हैं बीदर की ओर, तो बस फुल होती है। तो वो जिस बस में चढ़ी उसमें रश था, ऑलरेडी लोग खड़े थे, माताएं चढ़ती गई और ये भी चढ़ गई। चढ़ने के बाद क्या हुआ, अब क्योंकि पहले से ही बस में रश बहुत था तो वो तो अपना जहां उसको जगह मिली वहां पर वो खड़ी हो गई। अब रात को जब वो घर पहुंची तो उसके हस्बैंड उसको कहने लगे कि उमा तुम वो बस में वो दूसरे व्यक्ति के उतने पास पास में क्यों ठहरी थी, तुमको क्या जरूरत थी। तो उसने कहा आपको कैसे मालूम, तो उसके पति ने कहा मैं भी आया था सांगारेड्डी और उस चौरस्ते पे मैं भी खड़ा था, तू जिस बस में चढ़ी वो मैंने देखा और तुम कहाँ खड़ी थी वो भी मैंने देखा, लेकिन मैंने तुमको तब कुछ नहीं बोला और मैं तुमसे पहले घर आ गया हूं। तो कहने का भावार्थ ये है कि जिस व्यक्ति को शक करने का नेचर होता है ना तो कहीं से भी शक ढूंढ लेता है। अब बस है, अननोन पर्सन के साथ खड़े है, बस तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही मेरे बाप की प्रॉपर्टी है ना, तो जो लोग खड़े हैं उनके साथ तो मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप कहेंगे कि तू उसके बाजू में क्यों खड़ी थी, इसके बाजू में क्यों खड़ी थी, तो क्वेश्चन ही गलत है मुझे ऐसा लगता है। तो शक करना एक हमारी खुद की बीमारी है, दूसरों की वजह से हमारे अंदर नहीं आई है वो बीमारी। इसलिए ये जो हमारे अंदर इम्प्योर थॉट्स चलते हैं ना, अब इसके ऊपर हमको खुद को ही वर्क करना पड़ेगा। इस बीमारी को हमें निकालने के लिए खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और अपना जो एटीट्यूड है अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। हम अपने आप को रोज ये बोलना है कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। दृष्टि जहां जहां हमारी पड़ रही है जिन जिन व्यक्तियों पे, उन सब को देखते हुए आप मन में यही विचार लाइए ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब अच्छे है। तो जब आप ये सब अच्छे है का अभ्यास करेंगे ना तो ये शक का जो स्वभाव है ये अपने आप शांत होने लगेगा। मुझे जो अनुभव है उस अनुभव से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो आप इस अभ्यास को, इस प्रैक्टिस को कि सब अच्छे है, इस प्रैक्टिस को आप बढ़ाइए तो आप इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, ये अच्छी बात आपने सुनाई कि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और इसके लिए हमें बहुत कॉशियस होना चाहिए कि ये चीज हमारे अंदर डेवलप नहीं हो। अगर ऐसा हुआ भी है तो हम सभी के प्रति अच्छाइयां देखना और हर चीज के लिए अच्छा है ये कहने की आदत डालेंगे तो फिर ये बहुत कुछ हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अशोक नारायण जी थैंक यू भी कहते हैं और लगे हाथों फीडबैक भी दे रहे हैं कि उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हैं, इंद्रजीत कुंदू नाम है इनका। वो कहते हैं कैन यू प्लीज एलैबोरेट द पावर ऑफ अकोमोडेशन विथ एग्जाम्पल। वो पूछते हैं कि जैसे हम शक्तियों के बारे में बात करते हैं, राजयोग से बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, अकोमोडेट करने की ताकत की, हाँ भाई हम हर किसी के साथ मिल घुल जाएं, हर चीज को अपने अंदर संभालें, उस चीज की ताकत जो है उसके बारे में आप कुछ उदाहरण के साथ हमें बताएं, ऐसा इंद्रजीत पूछते हैं।
थोड़ा और थोड़ा क्लियर करेंगे भाई जी।
जी, जैसे हम ये कहते हैं दीदी कि राजयोग से 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हाल ही में कुछ दिनों में राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं। उन 8 शक्तियों में एक शक्ति आती है द पावर टू अकोमोडेट, यानी हम जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो लोग ये समझते हैं कि वो सभी चीजों को समाहित कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। तो इसके पावर के बारे में आप कुछ डिटेल में समझाएं, ऐसा इंद्रजीत कहते हैं।
मतलब गलतियां दूसरों की समा लेना।
जी, जैसे समाने की शक्ति होती है उसके बारे में पूछते हैं कि उसका कोई उदाहरण हो जो हम समझ सकें कि कैसे हम चीजों को समा सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि हम अपनी किसी की बात भी होती है तो हम समा नहीं पाते लोग।
जी, ये तो रोज के जीवन की बात है, दिनचर्या में आती है कि हम दिन भर में जिनके भी साथ कॉन्टेक्ट में आ रहे, व्यवहार में आ रहे, हर किसी से कुछ न कुछ हमें फेस करना है। सामने वाला कोई ना कोई सिचुएशन परिस्थिति लेकर के हमारे सामने आ ही रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जब कोई बात आती है ऐसी, तो उसको हम जो बड़ी बात है उसको हमें पहले छोटा करना है, उस बड़ी बात को छोटा करना है, मतलब उसको और बड़ा करने की भी आदत होती है। उस बात को जब हम छोटा करेंगे तो उसको हम हमारे अंदर समा सकते हैं, समा लेंगे, ऐसे ही कह रहे शायद।
जी 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 जी
जी।
तो बहुत बार ये होता है दीदी कि हिंदी में जैसे
विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कहते हैं, या इसमें एक सिंपल सा उदाहरण है कि नदियां जब सागर में जाकर के मिलती है तो नदियों का जो बहाव होता है उस बहाव में कचरा भी होता है, रेती भी होगी, प्लास्टिक भी होगा, दूसरा दूसरा भी कुछ कूड़ा कचरा होगा। तो इस प्रकार से वो जो सागर है वो अपने अंदर सबको समा ले रहा है अपने लहरों में, और सागर की विशेषता ये होती है कि वो सारा कचरा ना एक तरफ ही निकाल देता है और बीच में सिर्फ पानी पानी ही दिखाई देता है। तो ये जो समाने की शक्ति है, इसका जो उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है वो गणपति जी का है, गणेश जी का है। अब जल्दी ही हम गणेश जी की पूजा करने वाले हैं, शायद सितंबर या अगस्त एंड में ही गणपति जी हमारे बीच में आने वाले हैं। तो गणपति जी का उदाहरण इसलिए फेमस है क्योंकि उनका पेट बड़ा दिखाते हैं। किसी व्यक्ति को जब हम कोई बात सुनाते हैं और वो हमेशा मेरी बात को सुन लेता है और उसको स्प्रेड भी नहीं करता है, तो हम उसको बोलते समा लेने की शक्ति। तो उसको एक हिंदी में कहावत है, इसका पेट बहुत बड़ा है, ऐसा बोला जाता है हिंदी में, इसका पेट बहुत बड़ा है। और गणपति जी का पेट बड़ा ही दिखाते हैं। तो पेट बड़ा है मतलब क्या, कि इनके पास अगर हम अपनी बातों को लेके जाते हैं तो ये शांति से सुन भी लेते हैं, उन बातों को दूसरों में स्प्रेड भी नहीं करते हैं और अपने अंदर उसको समा भी लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी शक्ति है, समाने की शक्ति। और हर एक अगर इस समाने की शक्ति को अगर यूज करता है, समाने की शक्ति में सहन शक्ति भी निहित है, कुछ ना कुछ सहता भी है वो इंसान जो समा रहा है, सहन कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर खुद को औरों के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करके रिलेशन में जो एडजस्टमेंट चाहिए वो उसको बहुत अच्छा आता है, उसके अंदर वो क्वालिटी है। अगर समाने की शक्ति है तो वो माफ भी अच्छा कर सकता है, जल्दी माफ कर सकता है, और सुन के भी वो अनसुना होकर के उस व्यक्ति के साथ फिर से एज यूजुअल जैसे वो पहले था उसके साथ वैसे ही व्यवहार में आ सकता है। तो ये फायदे हैं समाने की शक्ति के। जी,
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि समाने की शक्ति के फायदे क्या हैं और कैसे हम इस चीज को समा सकते हैं। और जैसे आप उदाहरण दे रहे थे, मेरे को ये बात याद आती है, अगर किसी के अंदर समाने की शक्ति नहीं होती है तो अक्सर हम ये भी कहते हैं कि इसके पेट में कोई बात पचती नहीं है, कोई बात इसके पेट में ठहरती नहीं है, ये कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण बता रहे थे मेरे को वो बात याद आई। तो ये बड़ा पेट का उदाहरण जो है ये भी सांकेतिक है, गणपति जी के बारे में आपने जो बोला ये हमारे लिए एक उदाहरण भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसा भी बोल सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में।
जी जी जी, कॉमन टर्म्स में हम ये कहते हैं, बट हम बातों को भी अच्छी तरीके से पचाएं, उसको संभाल लें, ये बहुत जरूरी है। और संबंधों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। जितना हम लोगों की गलतियों को देखते हैं या फिर उनकी बुराइयों को देखते हैं, कोई वीकनेस को देखते हैं, तो भी उन्हें समा लेना चाहिए, कभी उन्हें पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे टाइमलाइन पे शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को आप यूट्यूब पे भी लाइक कर सकते हैं और वहां से भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे फीडबैक दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। सूर्या जी हमारे साथ हैं, जो अगला प्रश्न हमारे साथ लेकर आए हैं, उस प्रश्न को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं सूर्या जी, वो कहते हैं, दीदी माय डॉटर इज नॉट सेटिस्फाइड इन हर ऑफिस वर्क, शी फील्स नेगेटिविटी इन द माइंड, प्लीज एडवाइज, ऐसा कहते हैं। सूर्या जी कहते हैं कि उनकी डॉटर जो है उनके ऑफिस वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, ऑफिस में जो काम वो करती हैं उससे उनको संतुष्टि नहीं है और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करती हैं अपने मन में, तो उनको आप प्लीज गाइड करें, ऐसा वो पूछते हैं सूर्या जी।
तो सूर्या जी को मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले कि आप है ना अपने अंदर जो नेगेटिविटी है पहले उसको खत्म करें। आप जो ऑफिस के हर पर्सन के लिए सोच रहे हैं या आप जब हर व्यक्ति से मिल रहे हैं ऑफिस में, तो आपके अंदर जो एक इम्प्रेशन आपने बना लिया है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये व्यक्ति भी नेगेटिव है, ये जो इम्प्रेशन आपने अपने माइंड में बना के रखा है, उस इम्प्रेशन को आप पहले अपने अंदर से निकालिए, उस इमेज को आप चेंज कीजिए सबसे पहले। तो आपका जो नेगेटिव वाला जो थॉट पैटर्न अभी चल रहा है उसको आप चेंज करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अगर उनको पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव विचारों से, उस वाइब्रेशन से देखेंगे तो अवश्य ही आपको वो पॉजिटिव नजर आएंगे। और एक बात है इसमें कि जो व्यक्ति कल नेगेटिव था वो आज भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से आप खुद स्वयं, हम स्वयं जो कल थे वो आज नहीं है। कल हमसे भी कुछ नेगेटिव हुआ था, बुरा हुआ था, गलत हुआ था, लेकिन आज हमने वो खुद को थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया है, चेंज लाया है। ऐसे सामने वाला हर व्यक्ति जिसको हम नेगेटिव समझ रहे उसको भी एक स्पेस दीजिए। आप फट से उसके लिए एक इमेज या इम्प्रेशन मत बना लीजिए कि ये व्यक्ति नेगेटिव ही है या ये व्यक्ति ऐसा ही है, उसको आप थोड़ा स्पेस दीजिए। सामने वाला भी समय के साथ बदल रहा है जैसा मैं खुद को बदल रही हूँ। तो आप इस बात को अगर धारणा में रखेंगे तो, और उस सोच से आप उनके साथ इंटरैक्ट होंगे ऑफिस में, तो जरूर आपको उनके अंदर पॉजिटिविटी भी नजर आएगी। थोड़ा सा आप नेगेटिव देखने का जो स्वभाव आपके अंदर चल रहा है फिलहाल, उसके बजाय आप उस व्यक्ति का पॉजिटिव साइड देखिए कि ये मुझे ऐसा बोल रहे लेकिन इसके पीछे ऐसी क्या सही बात है जो वो मेरे से चाहते हैं, या मेरा इसके पीछे क्या अच्छाई है छुपा हुआ, भलाई वो जो मेरी चाहते हैं इसलिए वो ऐसा बोल रहे। और इतिहास में हमने जितने भी बड़े लोगों का नाम सुना है, इसको हम अलग ढंग से ऐसा भी ले सकते हैं, साइंटिस्ट के बातों में आता है, क्रिकेटर्स के विचारों में, स्पोर्ट्समैन जो फेमस हो गए उनके हर एक के अनुभव में ये आता है कि उनको पीछे खींचने वाले, नेगेटिव बोलने वाले, तू ये कर ही नहीं सकता, तू ये बन ही नहीं सकता, है ना, जिसको बोलते लेग पुलिंग, पीछे खींचने वाले लोग ज्यादा मिले हैं, जिसको हम भारत की भाषा में बोलते खेकड़े की चाल, जो होते ना क्रैप्स, वो क्या करते हैं अगर उनको एक जगह छोड़ देंगे कहीं चढ़ने के लिए तो वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं, खुद भी आगे नहीं जाएंगे फिर दूसरों को भी आगे नहीं जाने देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम खुद को पॉजिटिव देखने का ही संस्कार डालेंगे, कोई मुझे नेगेटिव दे भी रहा है लेकिन मुझे वो लेना है या नहीं वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, मुझे लेना है या नहीं, वो मेरे लिए नेगेटिव बोल रहा है, सोच रहा है, लेकिन मुझे वो लेना है कि नहीं वो मुझे, मेरे पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखिए। और जैसे ही रोज आप ऑफिस में जाते हैं तो जब आप अपने चेयर पे बैठते हैं तो 3 to 5 मिनट्स के लिए ईश्वर को याद करते हुए अपने ऑफिस के वातावरण को ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। जाते ही पहला काम ये कीजिए तो धीरे 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 वो लोगों का भी एटीट्यूड आपके लिए चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा, आप भी जरूर बदलेंगे और वो भी आपके लिए बदलेंगे।
बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही कि अगर हम ये पॉजिटिव कोशिशें करते हैं कि हम पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो वहां पर भी हम वो पॉजिटिव बदलाव देख सकते हैं, और नेगेटिविटी को बदलने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो पॉजिटिविटी डालना ही है। और जैसे हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे, हर दिन की शुरुआत ऐसे करने लगेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, और वर्क प्लेस पे बहुत जरूरी है कि काम की शुरुआत करने वाले
को चेंज होने के लिए टाइम भी दीजिए।
जी, ऐसा नहीं कि हम तुरंत रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें, सामने वाले के लिए भी थोड़ा टाइम देना,
खुद को भी परिवर्तन करने के लिए टाइम लेते हैं ना खुद को।
जी
हम भी तो एकदम से नहीं हो सकते ना, कल ऐसे थे और आज ऐसे बन गए, इस सामने वाले को भी टाइम दीजिए।
जी बहुत
जी
बहुत शुक्रिया दीदी। सूर्या जी को मैं समझता हूँ उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। लगभग हम 50 मिनट के करीब आ चुके हैं दोस्तों, और कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक ही प्रश्न और ले पाएंगे। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसे प्रश्न हैं जो आज हम नहीं पूछ पाएंगे, और बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि वो प्रश्न लिखते हैं और हम वो सारे प्रश्न नहीं ले पाते हैं, उन प्रश्नों को हम कल शामिल करने की भी कोशिश करते हैं, कल के कार्यक्रम में भी शामिल करने की कोशिश करते हैं, उन प्रश्नों को कोलेट करके भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पहले से प्रश्न दे सकते हैं तो ऐसे प्रश्न आप हमें पहले लिख सकते हैं, जिन प्रश्नों को हम कल के कार्यक्रम में बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। और कभी कभार हम आपके प्रश्नों को ईमेल के रूप में भी जवाब देने की कोशिश करते हैं, जो प्रश्न लाइव में उत्तर नहीं दिए जा सकते। ऐसे प्रश्नों को आप सोशल मीडिया @ प्रभाकुमारी.com पर पूछ सकते हैं। दोस्तों आखिरी प्रश्न मैं ईमेल पे आए हुए हमारे एक प्रश्न से लेना चाहता हूं। हमारे एक दोस्त ने लिखा है, वो कहते हैं कि पिछले कई दिनों से, जब से ये लॉकडाउन का समय आया है, उस समय से मैंने अपने अंदर ये परिवर्तन देखा है कि छोटी छोटी बातों पे मुझे अब चिड़चिड़ापन सा आने लगा है। मुझे अभी ऐसा लगने लगता है कि बच्चों को, जो कभी मैंने बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं किया, उन बच्चों को भी मुझे लगता है कि इन्हें दंडित करने की आवश्यकता है, इन्हें मारने की जरूरत है। ये मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और आजकल ये मैं ऐसा महसूस करती हूँ। इसके लिए आप एडवाइस करें कि ये परिवर्तन अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट मेरे अंदर ये चीज मैं ऑब्जर्व करती हूँ, और आप कृपया गाइड करें, ऐसा ये कहते हैं।
मैं ये कहना चाहूंगी कि नेचुरली आप एक अच्छे व्यक्ति है, आपके अंदर वो स्वभाव नहीं है, वो आपका नेचर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम घर के अंदर एक ही वातावरण में रह रहे, 24 घंटा उन्हीं व्यक्तियों के साथ रह रहे, क्योंकि जब खुला होता है तो हम बाहर जाते आते हैं, थोड़ा फ्रेशनेस, बाहर की हवा फील होती है, तो घर के अंदर उन्हीं व्यक्तियों के साथ, उन्हीं चेहरों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ बार बार बातों में आने से क्या हो रहा है ना, आपको इरिटेशन आ रहा है, और उस इरिटेशन के कारण आपके अंदर जो ये चिड़चिड़ापन सा आप खुद के अंदर महसूस कर रहे हैं, तो आपका तो ये स्वभाव नहीं है, इसलिए इसको आप बढ़ने मत दीजिए, यहीं पे स्टॉप कीजिए, और आप खुद भी एक सुंदर आत्मा है, और ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का, जिसको हम कहते हैं हेल्दी टाइम स्पेंड करने का एक टाइम मिला है, तो आप इसमें खुद को भी हेल्दी रखिए, और उसके लिए मैं कहूँगी आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और ऑक्सीजन, जब प्राणायाम करेंगे तो थोड़ा ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा तो वो भी फ्रेश होगा, क्योंकि बाहर जाके तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए, थोड़ा प्राणायाम भी कीजिए, और मेडिटेशन भी साथ में इसलिए कीजिए क्योंकि आप खुद को कूल रख सके, तो ये तीनों भी चीजें आपको इरिटेशन से बचाएगी। जब हमारा हेल्थ पर भी कुछ इफेक्ट आता है ना, तो उससे भी हमको चिड़चिड़ापन सा आता है, और वो चिड़चिड़ापन भी हम अपने घर वालों पर ही निकालते हैं जिनके साथ हम 24 घंटा बिताते हैं, तो इसलिए आप अगर फिजिकली थोड़ा फिट रखेंगे खुद को तो आपको मदद करेगा मेंटली फिट रखने के लिए, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की जरूरत है इसमें, क्योंकि इरिटेशन शरीर की बीमारी नहीं है, मन की बीमारी है, तो शरीर की बीमारियों के लिए जैसे हम शारीरिक आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मन की बीमारी को दूर करने के लिए मेडिटेशन, राजयोग की आवश्यकता है, तो आप थोड़ा सा अपने लिए, खुद के लिए समय निकालिए और मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप इस रोग को, मन को लगने ही ना दे, और लग रहा है तो उसमें से आप तुरंत अवश्य ही बाहर आ जाएंगे, और सभी को आप घर में जो है हेल्दी टाइम स्पेंड कीजिए, पॉजिटिव ही लीजिए हर एक को, तो आप मेंटली और फिजिकली, मैं समझती हूँ, अच्छे रहेंगे, सबको प्यार दे, और आप जब प्यार देंगे तो आपको अवश्य ही प्यार भी लेगा और वातावरण भी घर का प्यारा सा बन जाएगा। आप घर में बड़े हैं, रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि आपको देख करके ही बच्चे सीखेंगे आगे। जो हमारे माता करते पिता करते तो बच्चे बड़े होकर वही बोलते ना, हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमारी माँ ऐसा करती थी। इसलिए आप वो भी लक्ष्य रखिए कि मैं जो करूंगा मुझे देखकर फिर बच्चे भी मुझसे सीखेंगे, तो मुझे वही देना है जो मुझे बच्चों को सिखाना है। तो इस लॉकडाउन में कुछ हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए ताकि उससे मुझे भी बेनिफिट हो और घर वालों को भी बेनिफिट हो, तो अवश्य इसमें बने रहिएगा। बहुत अच्छा लगा ये सवाल भी मुझे भाई जी का।
जी थैंक यू दीदी। मैं समझता हूँ कि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है सवालों को लेने के लिए।
मैं एक बात बोलना चाहती हूँ भाई जी लास्ट में। आजकल जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स जो है कंपल्सरी लिखते हैं डू मेडिटेशन। लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन है क्या चीज, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। इसलिए मैं आज जितने भी भाई बहने प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी, नम्र निवेदन है, आपकी बहन हूं इसलिए कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहुत सुंदर राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते, इवन बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, वृद्धावस्था वाला भी कर सकता है। तो अवश्य आजकल सब ऑनलाइन फैसिलिटीज है, यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन तो आपको मिल जाएगा। उसका कोई कोर्स होता है, वो आप देखिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, तो अवश्य हर एक के मन में भी शांति आएगी और घर में भी शांति आएगी। तो यही शुभकामना है मेरी आज के दिन सभी से।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपके गुड विशेस के लिए। मैं आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को आपकी बात पसंद आई होगी। जितना आपने आज उत्तर दिए हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं और लाइफ के एग्जांपल्स दिए हैं और हमारे दोस्त इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। आज जिन दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे उन सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे प्रश्न मैं नहीं ले पाया हूँ, हर दिन की तरह आज भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ दोस्तों। सवालों को कल शामिल करने की मैं पूरा कोशिश करूंगा। आज जिन लोगों ने सवाल पूछे, जो फीडबैक शेयर किए हमारे साथ, जो अच्छी अच्छी बातें की, जो बात आपको अच्छी लगी उसके रिप्लाई में भी आपने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं और बहुत अप्रिसिएशन लिखा है, फीडबैक दिया है, उन सभी के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आशा करता हूं कि कल भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज दीदी जी ने हम सबके प्रश्नों का उत्तर दिया है और बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया है आप सभी दोस्तों की तरफ से। मैं सुनंदा दीदी जी का धन्यवाद करता हूं जो बीदर से हमारे साथ जुड़े थे। अब थोड़े से समय में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे और मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो 4-5 मिनट हमारे पास बचे हैं उन 4-5 मिनटों में वो हमें मेडिटेशन कराएं। दीदी जी,
तो सभी हम जहां पर भी बैठे हैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अपने आप को केंद्रित कीजिए। आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खुली भी रख सकते हैं। अपने मन को कहिए कि हे मन, अभी कुछ क्षणों के लिए दुनियावी बातों से, व्यर्थ बातों से स्वयं को मुक्त रखना है। अपने आप को मस्तक के बीच एक चैतन्य शक्ति अनुभव कीजिए। मैं एक एनर्जी हूँ, स्पिरिट हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अपने मस्तक में भीतर देख पा रही हूं, सकारात्मक सोच से मैं अपने भीतर को भी सकारात्मक शक्ति दे रही हूं। इस शक्ति का सोर्स इस शांति की शक्ति का सोर्स आत्मा के पिता परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वोच्च स्थान पर मुझे नजर आ रहे हैं, उस सर्वोच्च शक्ति से मुझ आत्मा पर शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्ति की किरणें शावर के जैसे पड़ रही है। मैं महसूस कर रही हूं कि मैं आत्मा भी शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति की किरणें से शक्तिशाली हो रही हूं। अब इसी परमात्मा से ली हुई शक्ति को, किरणों को मुझे विश्व की हर आत्मा तक पहुंचाना है। मुझे आत्मा से निकल के यह किरणें विश्व की हर आत्मा के मस्तक पर जाकर टच हो रही है। वे भी स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणों में कीटाणु खत्म होते हैं, उस प्रकार से ही परमात्मा सूर्य की किरणों से हम सभी आत्माओं के मन की कमजोरियां और साथ साथ शरीर की बीमारियां भी ठीक होता हुआ मैं देख रही हूं। पूरा विश्व ही स्वस्थ हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। पूरे विश्व में परमात्मा की किरणों की छत्र छाया फैली हुई है और उनकी छत्र छाया में हर आत्मा सुरक्षित महसूस कर रही है। बहुत ही शांति महसूस हो रही है, शक्ति की अनुभूति हो रही है। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। मैं आपको आज एक प्रण देती हूँ, इसी प्रकार से मैं रोज कुछ समय विश्व की सुरक्षा, विश्व की आत्माओं की शांति और सभी आत्माओं में बल भरने के लिए रोज आपसे शक्ति लेकर इस विश्व के वातावरण में इस सकारात्मक ऊर्जा को फैलाऊंगी। सभी आत्माएं मुझे बहुत दुआएं दे रही हैं। उन दुआओं की शक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जीवन की सभी कठिनाइयां अब हल्की महसूस हो रही है। मैं अपनी कमी कमजोरी को जीत रही हूं। हे परमात्मा, आप ऐसी ही दृष्टि से मुझ आत्मा को रोज निहाल करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।